आज शिविर का अंतिम दिन है और वैसे तो चार सेशन होते हैं, दो सुबह दो शाम को, किंतु शाम को प्रसाद भी है कुछ, शायद 7 बजे अराउंड रफली आई एम प्रिज्यूमिंग। तो 6:45 की के बाद हम एक और सेशन आई एम रेडी टू टेक। अगर प्रश्न है तो खासकर उस समय ले सकते हैं हम लोग। और अब हम लोग आएंगे श्री अरविंद के मुख्य कार्य पर। तो हम लोग श्री अरविंद का भविष्य का दर्शन, वो दर्शन नहीं है, वो भाग्य को केवल देख नहीं रहे हैं, उसकी सृष्टि भी कर रहे हैं। वो भविष्य दृष्टा ही नहीं, सृष्टा भी हैं। सुपर माइंड की बात हो रही थी कल कि जो वह देखता है वो क्रिएट भी करता है। तो ये एक अलग प्रकार का भाग्य दर्शन है, वो दिखा भी रहे हमको कि भविष्य क्या है और उनको क्रिएट भी करना है, दोनों चीजें हैं। और जो वो देख रहे हैं वही क्रिएट होता चला जाएगा। तो इसमें हर युग में हम देखते हैं कि जब युग संधि की वेला होती है तो भगवान आते हैं। ये हम सब मान्यता ही नहीं है, ये तो एक निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने इस पर अपना ऑथोरिटेटिव स्टैंप लगाया हुआ है। और श्री अरविंद भी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब अवतार आते हैं युग संधि के अवसर पर और वो फिर से धर्म को ऊपर उठाते हैं। तो आमतौर पे जब हम इस महावाक्य को सुनते हैं, ये गीता के 3 सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। बाकी 2 सीक्रेट है कि मनुष्य के अंदर भगवान है, उनको खोजा जा सकता है, और तीसरा जो सबसे बड़ा महावाक्य है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये 3 में से एक सीक्रेट है जिसको हम अवतारवाद का सिद्धांत मानते हैं। अब इसमें एक ऐसा प्रतीत होता है कि अवतार आते हैं और वापस वहीं पर ले जाते हैं, धर्मस्य ग्लानि, धर्म टूट गया था, वापस धर्म को वहीं स्थापित कर देते हैं जहां से वो निकला था। लेकिन यदि हम अवतारों की श्रृंखला को देखें तो उसमें ऐसा स्पष्ट है कि वो केवल वहीं नहीं ले जाते हैं, वो उस पुरातन सत्य को एक नया रूप देते हैं और जो युग अनुरूप है, और साथ में पूरी सृष्टि को एक कदम आगे ले जाते हैं। ये चीज बड़ी स्पष्ट आती है। श्री राम के समय में बंदर है, भालू है, राक्षसी आसुरिक सभ्यता है। श्री कृष्ण के समय में बंदर भालू भी अंदर है और राक्षस असुर भी अंदर है। तो एक अलग प्रकार से अब ये मनुष्य ने, श्री राम के समय मनुष्य ने पशु को और राक्षस को और असुर को अपने अंदर आत्मसात करना प्रारंभ किया था, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था राक्षसा पोएम में। तो ही फॉल्स, फॉल्स मतलब ही डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया मनुष्य। तो मनुष्य है अब, लेकिन उसके अंदर राक्षस असुर पशु ये सब उसके अंदर आ गए, ह्यूमनाइज्ड हो गए हैं। तो अब वो 10 सिर का रावण नहीं है, वो 1 सिर ही उसका काफी है ये सोचने को कि मैं दुनिया का राजा हूं, मैं कंट्रोल करूंगा सारी सृष्टि को, मेरे भोग के लिए बनी है। तो अब मनुष्य में ये क्या बन गया, रावण उपभोक्तावाद बन गया, हर चीज को मैं चाहूं तो नष्ट करूं, मेरे एंजॉयमेंट के लिए पृथ्वी बनी है, इत्यादि इत्यादि। अब श्री अरविंद के युग में फिर ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि धर्मस्य ग्लानि, अब उसको नेक्स्ट स्टेप, अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो वहां कहते हैं दिव्य मानव, देव मानव और दिव्य मानव। देव मानव की सृष्टि का प्रयास हुआ है समय समय पर, केन उपनिषद में भी हम देखते हैं। अब दिव्य मानव, दिव्य मानव क्या करेगा, अपने अंदर मनुष्य राक्षस असुर पशु सबको अपने अंदर ले लेगा, लेकिन अंतर यह होगा कि वो उन सबको ट्रांसमूट करेगा। जैसे मनुष्य पशु राक्षस असुर को एक ह्यूमनाइज्ड करता है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया, ह्यूमनाइज्ड हो गया। और ये हम लोग समझ सकते हैं अगर अपने जीवन को देखें और संसार के जीवन को देखें। तो उसी प्रकार से जो दिव्य मानव होगा वो असुर राक्षस पशु ह्यूमन को डिविनाइज करेगा। डिविनाइज करने का मतलब ये हुआ कि ये भी जो तत्व निकले थे सृष्टि में, ये कहीं ना कहीं उसी एक से निकले हैं, ऐसा नहीं कि इनकी कोई अलग ही जगह से इनका स्रोत है, स्रोत तो आदि स्रोत एक ही है, लेकिन विकास की कड़ी में ये एक एक लेयर पे प्रकट होते चले गए। जड़ तत्व जब बड़ा कठोर है तो उसको मथने के लिए देवताओं के पहले असुर आते हैं, इसीलिए वो ज्यादा सबल होते हैं, ज्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि पत्थरों को वो तराश सकते हैं और वो पहले आकर के काम करते हैं, भूमि जोतते हैं, जो भी उनकी। अब देखिए, आप अभी एक शेरविंद की कविता है उसके संदर्भ में बताएं, कविता उनकी चिल्ड्रन ऑफ वोटन, पढ़ी होगी कुछ लोगों ने। अब वोटन कौन है? वोटन नॉर्स मिथोलॉजी के गॉड्स है। नॉर्स मिथोलॉजी ये यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्वेजियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और उनका जो मुख्य क्रिएटर है वो ओडिन है और वो गॉड ऑफ फ्रेंजी है, क्रिएटर है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नॉर्स मिथोलॉजी को तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में देवता है कि असुर है। अगर हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे तो लगता है ये अजीब है, ये कैसा क्रिएटर है, फ्रेंजी का गॉड है वो। हालांकि वो वेल्थ विजडम डेथ का भी गॉड है, वो गॉड ऑफ डेथ है नॉर्थ मिथोलॉजी में। अब उसी का जो जर्मेनाइज्ड वर्जन था वो था वोटन, WOTAN, कुछ लोग वोदन भी बोलते हैं, वोटन। तो ये जो वोटन है उसकी ही संतानों में एक होता है हिटलर। और जैसे हम देखते हैं कि रावण और कंस, हिटलर और स्टालिन और मुसोलिनी के सामने वो बड़े अच्छे लगेंगे, मैंने रियली लगा कि ये उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और उस समय जब लोग नहीं देख पा रहे थे कि हिटलर कौन है, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जी उनसे हाथ मिलाने के, मिलाने नहीं गए थे, मिला चुके थे हिटलर को साथ लेके आने के लिए। और जब मां को ये पता चला, मां शेरविंद दोनों बहुत नाराज हुए। मां ने यहां तक कह दिया कि व्हाट ए डेंजरस थिंग ही इज डूइंग, कि ये क्या कर रहे हैं। वो ब्रिटिशर्स के विरोध में इतना अधिक ये देखिए होता है ना, उत्तेजित उन्माद आ गया है कि वो ये भूल गए कि यदि यह आ गया तो ये केवल भारत नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा होगा। ब्रिटिशर्स बदमाश हैं लेकिन उनको थोड़ा डिबेट डिस्कस किया जा सकता है, उनको प्रताड़ित किया, उनको रिवॉल्यूशन के द्वारा अल्टीमेटली ये भाग जाएंगे। शेरविंद ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1920 की बात है, ये स्वयं चले जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड की कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी। और फैक्ट है कि ये ब्रिटिशर्स क्यों गए, कोई गांधी जी के बारे का कारण नहीं गए, गांधी जी के कारण प्रोलॉन्ग हुआ उनका थोड़ा सा। वो इसलिए गए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो जितना ये लूट सकते थे लूट करके, इनको पता था कि दे हैव टू गो, इसीलिए इन्होंने क्रिप्स प्रपोजल दिया था। क्रिप्स प्रपोजल का पर्पस ये था, भाई हम जा रहे, अगर इसको साधारण भाषा में, देशी भाषा में समझाया जाए, हमें इज्जत से जाने दो। इज्जत से जाने देने का मतलब ये था, हम आप कॉमनवेल्थ की कंट्री बन जाओ, हमारी रानी रहेंगी आपकी। अब रानी रहेंगी आपकी, ऑस्ट्रेलिया की भी रानी वही है, लेकिन आप सबको हम पूरा स्वराज जो चाहो सब आपको दे देंगे, लेकिन कम से कम थोड़ी तो हमारी इज्जत कर रख लो कि रानी है वहां उनको सैल्यूट ये। तो जब क्रिप्स प्रपोजल आया था, अनडिवाइडेड इंडिया का था वो, नेचुरली उस समय डिवीजन की कोई बात ही नहीं थी। और शेरविंद ने कहा था दे मस्ट एक्सेप्ट इट, ये ग्रेस आ गई है दरवाजे पर। रानी एक टिटुलर हेड है, उसको हटना मतलब एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन गया, एनी टाइम यू कैन पास एन एक्ट, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में करने वाले हैं, US तो ऐसे ही बना, उसने तो डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस, तो आप कर सकते हो कि ओके वी डोंट वांट यू, क्योंकि आपकी फौज चली गई, सब चली गई। लेकिन उस समय जो भारत के लीडर्स थे, गांधी जी ने ये शब्द कहे थे, वह क्या जानते हैं भविष्य के बारे में, उनको कहो अपना आध्यात्मिक ध्यान करते रहें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, हम जानते हैं। और हम जानते हैं का क्या परिणाम हुआ, बंटवारा जिसका अभी तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तो वो इस तरह से वो देख रहे थे वो लोग, यहां तक कि उन्होंने कहा था हिटलर आ जाए तो आ जाने दो, कोई समस्या नहीं है। उस समय के रविन्द्रनाथ टैगोर, ये फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के जो हमको पता होने चाहिए कि भविष्य दृष्टा क्या कौन होते हैं। टैगोर मुसोलिनी के इन्विटेशन पर जाते हैं वहां पर, और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, शेरविंद ने तीन असुरों में से एक मुसोलिनी को कहा है, हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी। और मुसोलिनी का नाम आप देखेंगे कि जो इनका रोम में जो क्या है वो पोप का, पोप की किंगडम, वैटिकन, वेटिकन में उसका नाम है एज वन ऑफ द मेन पर्सन जिसने इसको बनाने में सहायता की है, नहीं हटा सके उसका नाम। और ये मुसोलिनी टैगोर को इनवाइट करते हैं और टैगोर जी जाते हैं, बड़े इंप्रेस होते हैं, कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा शासक है, क्यों लोग सारा प्रोपेगेंडा उसके सामने, हिटलर भी यही करता था, प्रोपेगेंडा किंग था। तो जब वो वहां से स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में रोमारोला उनको मिलते हैं, रोमारोला ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं श्री अरविंद के बारे में, वो रियली ही वॉज एन इंडोफाइल। तो वो मिलते हैं और जब वो टैगोर कहते हैं तो बड़ा अच्छा आदमी है, मिल के आए और कह रहे बहुत अच्छा आदमी है, तो क्यों इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है? तो रोमारोला कह रहे कृपया आप ऐसी बात बोल मत दीजिएगा, यही वो चाहता है कि आप यह कहे। और तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ, चले आए, उन्होंने एक अच्छा सा लेख लिखा था उसके फेवर में शायद नहीं छपा, दोबारा उसने बुलाया, दोबारा जाने को वो उद्यत थे, तब उनके बेटे ने कहा आप ये मत करो ये समस्या हो जाएगी। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, लेकिन श्री अरविंद उस कमरे में बैठे हुए जिन्होंने कभी नहीं मिले थे, ही न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन। ये होता है भविष्य दर्शन, चीजों के हृदय में जाकर के देख लेना। क्या देखा उन्होंने? इसमें तीन कविताएं हैं, एक है इन द बैटल, दूसरी है चिल्ड्रन ऑफ वोटन। चिल्ड्रन ऑफ वोटन अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग उसको आज नहीं पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे वर्णन है बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ वोटन, जो मैंने कहा हिटलर और उसकी सारे जो ये स्टालिन मुसोलिनी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो मनुष्य के हृदय की अग्नि को नष्ट करना चाह रहे हैं, यही है यज्ञ की अग्नि को नष्ट करना, और वो गॉड को स्ले करना चाह रहे हैं मनुष्य के हृदय में, कौन सा गॉड, जो काइंडनेस का, करुणा, प्रेम, उसको स्ले करना चाह रहे हैं, अब पूरे विश्व को एक मैकेनिकल मृत्यु तुल्य नियम के अंदर बांधना चाह रहे हैं। तो श्री अरविंद ने ये सब देखा है, और फिर उन्होंने हिटलर पे भी एक पोयम लिखी है, और वो भी उस समय तो भविष्य, अब तो सबको पता चल गया, जग जाहिर हो गया कि हिटलर कौन था, लेकिन उस समय जो प्रोपेगेंडा मशीन थी उसमें किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि हिटलर कौन है। और भी एक पोयम है, एनीवेज उसको हम लोग दो मिनट बाद पढ़ लेंगे, ये 1939 में लिखी है, ये वही समय है 38 जब श्री अरविंद के पाँव में फ्रैक्चर होता है। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि अब ये असुर पूरी तरह पृथ्वी को अपने अधिकार में लेना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को पता चलने के पहले असुर को पता चल गया था कि कोई आ गए हैं यहाँ पर जो दिव्य साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, और सारी प्राण जगत की शक्तियां उतर गई थी उसको नष्ट करने के लिए। अब देखिए इसकी हम लोग ये कहानी बाद में सिंडलर्स लिस्ट और बाद में आई, उस समय तो लोग नहीं जान रहे थे कि ये कौन है, ये असुरों का भी असुर है। ये पेज 47 पर है ये पुस्तक श्री अरविंदोज लाइफ थ्रू हिज पोएम्स, कुछ कुछ पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। द ड्वार्फ नेपोलियन, क्योंकि लोग ये कह रहे थे नेपोलियन तो विभूति था, पूरे यूरोप को वो एक सूत्र में बांध रहा था, तो इनको लगा ये भी बहुत अच्छा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सबको एक सूत्र में बांध रहा है, कैसे बांध रहा है, एम्पायर क्रिएट करके। तो इंग्लैंड ने भी किया था एम्पायर क्रिएट, और भी फ्रांस ने भी किया था, तो ये भी एम्पायर क्रिएट कर रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? वो तो अपने राष्ट्र का हित चाहता है और राष्ट्र के आधार पर वो एम्पायर क्रिएट कर रहा है। ये नहीं पता था उनको कि इसका एम्पायर कैसा क्रिएट कर रहा है ये, इसके एम्पायर में मोनोटोन है, कोई और प्रकार के जीवन की इसमें संभावना नहीं है, सिर्फ वह जो वह विश्वास करता है, और ये उसकी समस्या थी। बाकियों ने एम्पायर क्रिएट किया, इंपीरियलिज्म का समय था, उस समय प्रकृति इस तरह से विश्व को आपस में मिला रही थी, लेकिन इसने सब कुछ जो मेरे जैसा नहीं है उसको नष्ट कर दूंगा, ये हिटलर की एक पहचान होती है। अब शुरू की लाइन देखिए इसमें, बिहोल्ड बाय मायास फैंटेसी ऑफ विल, किसको ब्लेम कर, हम लोग कई बार कहते हैं ना ये मनुष्य वो मनुष्य, शेरविंद सीधा स्रोत में जाते हैं, जैसे मांडव्य ऋषि, क्यों मुझे इस पर सोना पड़ा? राजा कह रहा है मैं हूं, तुम कौन हो? मैं पूछने जा रहा हूं विधान के देवता विधाता से कि ऐसा मुझे क्यों लिखा गया था। ए वायलेंट मिरेकल टेक्स सडन बर्थ, द रियल ग्रोज वन विद द इनक्रेडिबल, इन द कंट्रोल ऑफ हर मैजिशियन वांड, द स्मॉल अचीव्स थिंग्स ग्रेट, द बेस थिंग्स ग्रैंड, दिस प्यूनी क्रीचर वुड बी स्ट्राइड द अर्थ। अब ये स्मॉल अचीव्स थिंग्स ग्रेट, द बेस थिंग्स ग्रैंड, हिटलर के इनर डेवलपमेंट के बारे में शेरविन ने कहा था, ही हैज द साइकिक ऑफ ए लंडन टैक्सी ड्राइवर, बिल्कुल अनडेवलप्ड है इसका साइकिक। लेकिन इस तरह के लोग जिनकी ये डेवलप नहीं होती आंतरिक चेतना, अक्सर मासेस पर बहुत अधिक इनका अधिकार होता है। जब शेरविंद से कहा गया था पांच लक्षण, पांच बोल के नहीं कहा गया था, उनसे कहा था लक्षण की इस बार सुपर माइंड डिसेंड करने वाला है, इसके क्या लक्षण होंगे? तो लोग कहते हैं ना कलयुग की लक्षण, कलयुग के लक्षण। शेरविंद कहते हैं पहला, ज्ञान अपनी चरम सीमा, मन के द्वारा जितना ज्ञान हम अर्जित कर सकते थे वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब वो सीमाओं से फटने वाला है, तो जब वो फटेगा मनुष्य की मन की चरम सीमा से, तो प्रवेश करेगा मन की सीमा के परे, वो हो गया। हम देखते हैं फिर एक चीज कहते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें ये बताते हैं कि इस संसार में ऐसे लोग आएंगे और आ रहे हैं, आ चुके हैं, जो प्राणिक जीव होंगे, वाइटल बीइंग्स होंगे, लेकिन मासेस ऑफ मैनकाइंड को कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे मास हुजूम क्राउड, क्यों? क्योंकि जो प्राण प्रेरित ये बीइंग्स होते हैं, राक्षस असुर उसी को अलग ढंग से हम कह रहे हैं, वो ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन वाइटल को कंट्रोल करते हैं। और ह्यूमन वाइटल क्या है? वो पैशन पे चलता है, वो पैशन को भड़काते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं, और एक्साइटमेंट के आधार पर वो बहुत भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। असुर कैसे करता है? वो मन को कंट्रोल में करके करता है। राक्षस पैशन के आधार पर करता है। आप देखिए, आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे दिख जाएंगे जो प्राण को उकसा करके, और जो दूसरा असुर वो मन को भरमा करके वो इकट्ठा करता है। लेकिन प्राण के जो स्थित ये बींग्स होते हैं वो बहुत भीड़ इकट्ठी करते हैं। तीसरा शेरविन कहते हैं कि ऐसे लोगों का उदय होगा जो ना केवल मास मैनकाइंड को कंट्रोल करेंगे बल्कि उनको उनको पूरी तरह यही अधिकार करेंगे। मतलब एक और है कि दे विल बी एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स जो राइज करेंगे और वो एक प्रकार से समझिए कि राजा बन जाएंगे। आगत युग में ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये युग है कलेक्टिव इवोल्यूशन का। कलेक्टिव इवोल्यूशन में किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति के आधार पर ये नहीं चलेगा। यही नारायण का जो असली स्वरूप है, नर के अंदर जो वास करते हैं, तो इट्स ए कलेक्टिव इवोल्यूशन, उसकी बात करते हैं श्री अरविंद। तो इस प्रकार से वो कई लक्षण बताते हैं कि ये नवयुग आने वाला है। मतलब पहले पुराना युग जाएगा, फिर नवयुग आएगा। तो उनमें से एक है हिटलर, जो इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और उसका जन्म कैसे होता है? माया की फैंटेसी। ये कौन सी माया है? दो प्रकार की माया बताई हैं श्री अरविंद ने। एक तो जो विद्यामय माया और दूसरी अविद्यामय माया। अविद्यामय माया बिकम्स द मदर ऑफ डार्कनेस एंड ईविल। तो हम लोग जब ईविल को देखते तो हम कहते हैं यह व्यक्ति वो व्यक्ति। श्री अरविंद, यह व्यक्ति वो व्यक्ति तो ठीक है, इसके पीछे क्या कार्य कर रहा है? हाँ, कोई कोई हैं जो उसके बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनकी भी पहचान श्री अरविंद बताते हैं। तो उनमें से एक था हिटलर, लेकिन उसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही थी? डार्क आसुरिक माया। और ये बड़े विचित्र ढंग से काम करती है। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, एक डिसाइपल पूछता है कि डिवाइन मदर को तो हम सब मानते ही हैं, तो यह मदर की तो ऐसे जरूरत नहीं है, वैसे हैं डिवाइन मदर इस रूप में, लेकिन वो वर्ल्ड मदर हैं। तो शेरविंद कहते हैं, बी केयरफुल ऑफ ए होस्टाइल आसुरिक माया क्रिएटिंग ए डिविजन बिटवीन दिस मदर एंड दैट मदर। अब ये देखिए कहाँ याद आती है ये बात, ये होस्टाइल माया, इस प्रकार का डिवीजन हमारे शास्त्रों में भी है। शास्त्रों में कहाँ, ये अविद्यामय माया जो नहीं समझ पाती है इस बात को, सती की कहानी। वो शिवजी से कहती है, ये देह धारण करने वाले देहधारी को आप सच्चिदानंद ब्रह्म कह रहे हो, स्वयं को इनका सेवक बता रहे हो। हाउ कैन ही बी द डिवाइन, हाउ कैन ही बी गॉड, हाउ कैन ही बी योर लॉर्ड। आप तो देवता हो, देवों के देव हो, आप इनको प्रणाम कर रहे हो सच्चिदानंद ब्रह्म करके। देखिए ये माया का पर्दा होता है, हमारे शास्त्रों में है। तो शिव जी कहते हैं कि देखो ये गलती मत करना। वो कहती है, मैं टेस्ट करके आती हूँ, ये मत करना। और हम सब जानते हैं, ये कहानी सबने सुनी होगी, टेस्ट करने जाती है माता सीता का रूप धारण करके। क्यों? क्योंकि श्री राम भटक रहे हैं, हे सीते पत्तियों से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा, वृक्षों से पूछ रहे हैं सीता को देखा। कहती इनको भगवान कह रहे हो? तो जाती हैं, ओट में खड़ी होकर वृक्ष से सीता का रूप धर लेती हैं। और तब राम जी कहते हैं कि माता आप आ गई, अब आपके जो पति परमेश्वर हैं वो आपको ढूंढ रहे होंगे, चिंतित हो रहे होंगे, ठीक वैसे जैसे मैं चिंतित हो रहा हूं सीता के लिए। तब वो रियलाइज करती है कि मैंने क्या भूल की है, क्योंकि वो रूप से नहीं चेतना से जानते, जो संबंध है उनका चेतना से। ही अंडरस्टैंड्स सीता नॉट बाय रूप बट बाय कॉन्शियसनेस। ये रामायण में कई जगह पर ये बातें आती हैं। एक होती है जब वो राम जी का शीश ले आते हैं, रावण ले आता है माया से, तो माता सीता कहती हैं, शी कॉन्सेंट्रेट फॉर ए वाइल एंड शी नोज शी इज फुल्ली कनेक्टेड विद राम एंड शी सेज नो दिस इज फॉल्सहुड। यही कहानी आती है गौतम नारी अहिल्या के केस में, कि तुमने रूप से देखा, चेतना से नहीं समझ पाई कि ये मैं नहीं हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कि कॉन्शियसनेस से संबंध जोड़ करके पहचानना, ये अपने आप में एक विज्ञान है। रामायण में बहुत सारी ऐसी अकल्ट चीजें रामायण महाभारत में दी गई हैं। तो जब लोग बाहर से देख रहे थे हिटलर को, उसके प्रोपेगेंडा को, श्री अरविंद ने अंदर से देख लिया था कि ये किसकी क्रिएशन है। और वो जरूरी था, क्योंकि अब नया युग आ रहा था, नए सतयुग में हम प्रवेश कर रहे थे। तो जो सबसे बड़ा कंटक अविद्यामय माया ने अंधकार के गर्भ से बिल्कुल निकाल करके सामने प्रकट कर दिया। अगर हम इसको पौराणिक ढंग से स्टोरी को पेश करें तो कहा ये भी है, इसका भी कुछ कर दो आप। तो श्री अरविंद माता जी का युग है, तो जो उन्होंने किया वो तो हम सब जानते हैं। Even as the immense colossus of the past, Napoleon's mind was swift and bold and vast. अब वो लोग कह रहे थे ये नेपोलियन है, तो शेरविंद कहते नहीं। His heart was calm and stormy like the sea, his will dynamic in its grip and clasp. तो नेपोलियन का वर्णन करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि यह वो नेपोलियन नहीं है, ये तो असुर है, असुरों का भी असुर है। कुछ पंक्ति पीछे देखिए, नीचे, दिस स्क्रीमिंग ओरेटर, उसके एक लाइन पर, वायलेंट एंड क्रूएल डेविल चाइल्ड एंड ब्रूट, दिस स्क्रीमिंग ओरेटर विद हिज ट्राइडेंट टंग, अच्छा बोलता है लेकिन हर बात में उसके मुंह से स्ट्राइडेंट, किसी को चुभाना, किसी को काटना, यही उसके मुख से निकलता है वाणी से। दिस प्रॉफिट ऑफ ए स्कैंटी फिक्स्ड आइडिया, विशालता नहीं है, एक छोटे से आइडिया को लेके वो यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, ये असुरों की पहचान होती है। क्यों श्री अरविंद ने गांधी जी के बारे में ये बात कही थी और उनसे कभी उनको कभी दर्शन नहीं दिया, क्या समस्या थी? रिजिडिटी एंड ए नैरो आइडिया। और ये समय आ गया कि भारत अपनी मानसिकता से उनको बाहर निकाले। रिजिडिटी, मैं जैसा कहता हूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसे ही सब लोग करें, बकरी का दूध पिए, चरखा चलाएं, फटेहाल रहें, जमीन पर सोएं, एक जो एसेटिक लाइफ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और स्कैंटी आइडिया, नॉन वायलेंस को यूनिवर्सलाइज कर देना, और वो भी बाहर से, दैट इज द हॉल मार्क ऑफ द असुरा। और अपनी बात वो हर तरह से मनवाते थे, ये होता है असुर का तरीका। डिवाइन का तरीका, श्री कृष्ण सब कुछ बता देते हैं अर्जुन को, बाद में कहते हैं अर्जुन मैंने तुझे जो कहना था कह दिया, अब तू चुनाव कर ले। श्री अरविंद माता जी, कहीं पर आप नहीं देखो कहें यू मस्ट डू दिस, इफ यू डोंट डू दिस यू विल बी पनिश्ड, कुछ नहीं, वो बताते हैं, सब बताते हैं हम लोगों को, फिर फ्रीडम दे देते हैं। किसी ने पूछा भी श्री अरविंद से, कहा कि आपके जैसे चाहते हैं, अगर आप क्यों नहीं, वे लोग जो आपके अनुसार नहीं चलते आश्रम में, आप उनको बाहर निकाल दो। श्री अरविंद कहते हैं पूरे आश्रम को खाली करना पड़ेगा पूरे आश्रम को खाली करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूं कि भाई देखो ये अच्छा है, ऐसे रहना चाहिए लेकिन फ्रीडम, कोई कहता है आपने इतनी फ्रीडम क्यों दे रखी है लोगों को, कहते बिना इतनी फ्रीडम के सुपरमैन नहीं क्रिएट किए जा सकते। ये लोग बताते हैं, माता जी का जब दर्शन करते थे तो उनको ऐसा लगता था वो स्वयं से भी मुक्त हो गए एक वास्टनेस में और फ्रीडम में चले गए, और असुर के सामने प्रेशर, दबाव, यू हैव टू कन्फॉर्म टू हिज विल। तो यहां उसकी बात हो रही है, दिस प्रॉफिट ऑफ ए स्कैंटी फिक्स्ड आइडिया प्लेज नाउ द लीडर ऑफ अवर ह्यूमन मार्च। कई ऐसे आए थे उस समय, हिज माइट शैल बिल्ड द फ्यूचर्स ट्रायम्फ आर्च, नाउ इज द वर्ल्ड फॉर हिज ईटिंग ए राइप फ्रूट, हिज शैडो फॉल्स फ्रॉम लंडन टू कोरिया। ये सब उन्होंने देख लिया था 1939 में, कि ये यूरोप की दो चार कंट्री से रुकने वाला नहीं है ये तो। और हिटलर को जब फिट्स आते थे तो उसमें वो इंडिया 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 कहता था, वो चाहता था इंडिया आना। और श्री अरविंद कहते हैं कि दिस इज मदर्स वार, और उसमें ये तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है अपने आप में, और लोग हिटलर के आश्रम में लोग हिटलर के साथ थे, क्यों, क्योंकि कई राष्ट्रभक्त थे, तो हिटलर इंग्लैंड का दुश्मन है, तो चाणक्य नीति पढ़ी थी उन्होंने, शत्रु का शत्रु मित्र, व्यास नीति नहीं पढ़ी थी, धर्मो रक्षति धर्मा। श्री अरविंद कहते हैं भारतवर्ष का एक पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने चाणक्य नीति को अपनाया, ना कि व्यास नीति को। व्यास और विदुर नीति क्या है, धर्मो रक्षति धर्मा, आप धर्म के साथ खड़े रहो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन शत्रु का शत्रु मित्र इसलिए आप बना लो, चाहे वो विधर्मी क्यों ना हो, ये नीति नहीं है, ये जो नीति है ये विनाश की ओर ले जाती है। अब देखिए कितना डिफरेंस है ये। तो उस समय के लोग ये सोच रहे थे बड़ा अच्छा हुआ कि अब हिटलर खड़ा हो गया, देखना इंग्लैंड वालों को भगा देगा, हम फ्री हो जाएंगे। उनको पता नहीं था अगर फ्री हो गए हिटलर आ जाएगा तो क्या होगा। और ये पूरा चैप्टर है, श्री अरविंद कहते हैं यू डोंट नो, इंग्लिश पीपल जाने वाले हैं, अब इनका सूर्य अस्त होना प्रारंभ हो गया है, ये तो चले जाएंगे, वर्ल्ड कंडीशन इनको अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर यह आ गया तो 10,000 वर्षों तक आप मुझे बोलो, मैं आश्रम खुद ही पैक कर देता हूं, यू कैन फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, 10,000 वर्ष पीछे ले जाएगा संसार को। सिटीज एंड नेशंस क्रम्बल इन इट्स कोर्स, ए टेरर होल्ड्स द पीपल्स इन इट्स ग्रिप, वर्ल्ड डेस्टिनी वेट्स अपॉन दैट फोमिंग लिप। ये सब उनको कैसे पता था, ये तो बहुत बाद में लोगों को पता चला है, बहुत उसके जो नजदीकी लोग थे हिटलर को फिट्स आते थे, और वो फिट्स में उसके मुंह से झाग निकलती थी, और जब झाग निकलती थी तो वो कई बार नीचे लौटता हुआ जो कारपेट होता था ना उसको काटता था, च्यू करता था, और उस समय इस तरह की बातें करता था, उसमें कभी कभी इंडिया इंडिया ऐसी बातें करता था। श्री अरविंद फोमिंग लिप्स, मुंह से झाग निकलना, मतलब वो एक ए विल टू ट्रैम्पल, हाँ, ए टाइटन पावर अपहोल्ड्स दिस पिग्मी मैन, द क्रूड ड्वार्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए माइटी फोर्स, हेटर ऑफ द फ्री स्पिरिट जॉय एंड लाइट। ये उसको कदापि पसंद नहीं है, फ्री स्पिरिट जॉय एंड लाइट। आप देखेंगे जहां जहां असुर का साम्राज्य हुआ है वहां म्यूजिक बैन हुआ, सौंदर्य बैंड हुआ। माँ भारत के बारे में कहती है इट वॉज द एक्शन ऑफ द असुर, कि यहाँ सौंदर्य को लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये अनडिवाइन है। था ना एक मानसिकता, सादगी अलग बात है लेकिन सौंदर्य से घृणा करना, हेट करना, झोपड़ी को आदर्श बना देना, जमीन में सोने को कठोरता को समझना कि ये बहुत बड़ा। श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया था, ना श्री राम ने। श्री राम थोड़ी कोई चटाई पर सोते थे अयोध्या में। हाँ जब वो चटाई मिली तो चटाई पे भी सोते थे। ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण ने कोई एक धोती पहन करके नंगे होके घूम रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मैं तो बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। ये भारत ने कृष्ण का परित्याग किया गांधी को अपना के, और उसका परिणाम हुआ है जब तक श्री कृष्ण हैज रिटर्न्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ श्री अरबिंदो एंड इज अवेकनिंग। ए विल टू ट्रैम्पल ह्यूमैनिटी इनटू क्ले एंड यूनिफाई अर्थ बीनीथ वन आयरन स्वे। तो ऐसी भी सभ्यताएं आई हैं, अभी भी हैं, जो ह्यूमैनिटी कुछ नहीं, भगवान ने कहा है मारो हम मारेंगे, मनुष्य का कोई लेना देना नहीं। हमारे भगवान ने कहा है मार दो, सर तन से जुदा कर दो, वी विल डू इट। मतलब उसमें वह नहीं है। श्री कृष्ण का तो गीता में सब कुछ प्रयास करते हैं अंत तक की संधि हो जाए, शांति हो जाए। किस हद तक जाते हैं वो, अंत में वो न्याय की मांग है, इसलिए कहते हैं युद्ध करो। ऐसे नहीं कि चल उठा धनुष मार पीट कर दे। और यहां तो एक आइडियोलॉजी नहीं मानोगे, ये असुर की स्टैंप होती है। माँ कहती है सम ऑफ द गॉड्स ऑफ द रिलीजन्स आर ग्रेट असुरास। ये असुर की पहचान है कि हम जैसा कह रहे हैं यदि तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। ये हिटलर का और कुछ नहीं था, यही नारा था। अब इस तरह से चलते रहता है और फिर अंत में श्री अरविंद कहते हैं लास्ट की 6 लाइन अगले पेज पर, पेज 49 पर, एन एनर्जी हिज बॉडी कैनॉट इन्वेस्ट टू स्मॉल एंड ह्यूमन फॉर द ड्रेडफुल गेस्ट। राक्षस और असुर का भी यंत्र बनना आसान नहीं है, वो एनर्जी टाइटेनिक एनर्जी। आप देखिए रावण कैसे तैयार हुआ था, उस ऊर्जा को होल्ड करना। पेज 49 उस लास्ट की 6-7 लाइन, तो शेरविन देख लेते हैं कि इसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, ये होल्ड नहीं कर सकता इवन राक्षस ससुर की ऊर्जा को। लेकिन आया महाअंधकार से है, ए टॉर्चर्ड चैनल नॉट ए हैप्पी वेसल ड्राइव्स हिम टू थिंक एंड एक्ट एंड क्राई एंड रेसल। टॉर्चर्ड चैनल, आप देखेंगे कि ऐसी मानसिकताओं की आइडियोलॉजीज आई है। रिवोल्यूशन फ्लोज विद द बैरल ऑफ ए गन माओ से तुम। अब आप देखिए ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जिसका एक वो माओ आया और लाखों का उसने इस पर, ये आइडियोलॉजीज। कोई भी चीज अगर खुशनुमा है तो नहीं होनी चाहिए, मुस्कुरा नहीं सकते हो, स्वयं को ढक दो कालो काले कपड़ों में। जस्ट इमेजिन किस तरह की आइडियोलॉजी, दे आर आसुरिक एंड डेमोनिक आइडियोलॉजीज। एंड वन हैज टू सी, और बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं एवरीथिंग इज सेम, ऑल इज सेम, मतलब भारतवर्ष की मानसिकता को क्या हो गया है, कई बार ये आश्चर्य होता है। और दिख रहा है कि जो भी चीज हैप्पी है उसको नष्ट करना है। ड्राइव सिम टू थिंक एंड एक्ट एंड क्राई एंड रसिल दस ड्रिवेन ही मस्ट ट्राइड ऑन कॉन्करिंग ऑल। भविष्य देखिए 39 में बता रहे हैं श्री अरविंद, थ्रेटनिंग एंड क्लैमरिंग brutal, invincible, until he meets upon his storm-swept road a greater devil or thunderstroke of God. दो नहीं मिले उसको। Thunderstroke of God was, माँ जाती हैं और एक साधिका ने 3 दिन पहले यह देखा कि घोड़े पे जा रही हैं और उन्होंने तलवार से इसको स्ले किया। उसने कहा मैंने क्या देखा माँ? माँ मुस्कुराती कहती ठीक देखा लेकिन चुप रहो। और ग्रेटर डेविल कौन मिला? हिटलर को तो गॉड के थंडर बोल्ट ने हटाया, ग्रेटर डेविल मिला स्टालिन। वो भी माने हिटलर को प्रेरित किया, उसको एक गॉड दिखाई देता था। अब ये सभी होते हैं ना, हमने भगवान को देखा, विजन देखा, विजन देखा काफी नहीं है, उससे आपके हृदय में शुद्ध भाव आए, शुभ्र भाव उठे, प्रेम जगा, क्या क्या शांति जगी। यहां विजन देख के उसके वो विजन में जो गॉड आते थे वो केवल यही कहते थे उधर जाओ उधर, इसलिए शेरविन बोटन के का बच्चा उसको इससे लड़ो उससे लड़ो, उसको अपने कब्जे में करो, उसको पजेस करो। और इस चक्कर में एक बार माँ वह रूप धर के जाती हैं और कहती हैं रूस से लड़ो, तो मुड़ जाता है रूस की तरफ। और जब वो माँ वापस जा रही हैं तो जो इसका जो असुर कंट्रोल करता था वो दिखाई देता है माँ को, और उसको समझ आता है कि अब कुछ गड़बड़ हो गई है। डिवाइन डिप्लोमेसी कहा था श्री अरविंद ने इसको। 15 अगस्त को वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने का प्रण करता था, और वो फिर जाता है वापस वो फॉल्सहुड का असुर, और हिटलर को कहता है नहीं नहीं रशिया की तरफ मत जाना। और हिटलर क्या समझता है कि यह मुझे बुद्धू बना रहा है, जो ओरिजिनल उसने मुझे रशिया की ओर जाने को प्रेरित किया है वो सही है। ही अटैक्स रशिया, वहां खत्म हो जाता है, वी नो दैट स्टोरी। सो अब इसके और मूल में क्या है, ये तो एक हिटलर की बात हुई, स्टालिन की, मुसोलिनी की। बहुत छोटा, इसीलिए शेरविन ने कहा साइकिक ऑफ ए साइकिक बीइंग तो रेयर है, डेवलपमेंट के बाद होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में था साइकिक, कंप्लीटली कवर्ड विद डार्कनेस, चैत्यांश अंश होता है सब में। हालांकि शेरविन ने बड़े जोकिंगली कहा सर इज द साइकिक प्रेजेंट इन ऑल, शेरविन कहते हैं यस बट मोस्टली इट इज कवर्ड विद टू मच डार्कनेस एंड इवन आई हैव टू टेक इट बाई फेथ कि है उसके अंदर। वो समझिए कि पालने में बुरी तरह उसको अज्ञान की चाशनी में सोया हुआ हो तो उसका कोई रोल नहीं होता है, वो आसन्न मृत्यु। यानी साइकिक की तीन अवस्थाएं हैं, एक जिसमें वो पूरी तरह डार्कनेस के कब्जे में है, वूम्ब में बच्चा है, पर आप उसको बच्चा कहें या भ्रूण कहें यह आपके ऊपर है। कंप्लीटली, क्योंकि ऐसे ही लोगों को असुरिक शक्ति काबू में ले सकती है, टोटल डार्कनेस। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है साइकिक की, जिसको शेरविन कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में अनीश। देखिए अगेन शेरविंदो कैसे यूज करते हैं शब्द को, अनरित, अनीश। अनीश कौन है, जो लॉर्ड है लेकिन उसने अपना स्वामित्व गंवा दिया है, अनीश नॉट लॉर्ड। तो प्रकृति का स्वामी नहीं है, दास है। वासव दत्ता जो उनका प्ले है उसमें भी ये तीन स्टेजेस आती हैं। दूसरे में जब वो विटनेस बनता है, साक्षी बनता है, फिर वो अनुमंता बनता है, फिर वो ईश बनता है। तो ये पूरी तरह अनीश अवस्था में है, प्रकृति जहां नचा रही है वो नाच रहा है। तो प्रकृति एकदम, प्रकृति तो रेंज है ना, एकदम अज्ञान इनकॉन्शियंट से निकलती है वो पूरी अज्ञान की माया, अंधकार की माया, और जाती है परा प्रकृति तक। तो ये उसके कब्जे में था, और वो भी जरूरी था, उसके पीछे जो ग्रेटर प्लान था, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी समाप्त करना था, वो सारा भगवान का प्रयोजन, क्योंकि सुपर माइंड ने हिसन कर दिया इसके थ्रू, वो एक अलग बात है। तो उसके मूल में कौन है, ये चार असुर हैं। कि माँ से किसी ने कहा कि हिटलर अब चला गया, हिटलर मर गया, तो अब तो सब ठीक हो गया, कहती किसने कहा तुमको, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका जाना जरूरी था बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया था। पृथ्वी पर इंस्ट्रूमेंट की बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ओरिजिनल फोर्स को अगर आप नहीं टैकल करते हो तो निदान नहीं है। आपने एक बीमारी, बीमार आया, बहुत बड़ी बीमारी से था, बड़ा काबिल डॉक्टर था, बीमारी ठीक कर दी, लेकिन वो बीमारी उस व्यक्ति में ठीक करी, वो तो फिर आ सकती है, उसमें आ सकती है, दूसरों में आ सकती है। फोर्स ऑफ इलनेस को आपने टैकल नहीं किया, तो फोर्स ऑफ इलनेस को कैसे टैकल करना है। वो वैक्सीनेशन से भी नहीं जाती, वो रूप बदल लेती है, रक्त बीज है ना, देखा ना कितने वेरिएंट आ जाते हैं। तो अनलेस यू डिस्ट्रॉय द फोर्स, यही माता जी की स्पेनिश फ्लू के साथ जो पूरी कहानी है। पर यहां हम लोग शेरविन ने देखा कि ये धरती में ईविल, अंधकार, ये सब क्यों है, क्योंकि इसके रूट्स में ये चार असुर ओरिजिनल असुर बैठे हैं। कौन है ये चार ओरिजिनल असुर? सत चित तपस आनंद, इसी को आप अब रिवर्स कर दीजिए। सत ट्रू एग्जिस्टेंस बिकम्स फॉल्सहुड, जो नहीं है लेकिन लगता है। अंधकार नहीं है, क्यों नहीं है? प्रकाश ने अपने को गुप्त कर रखा है, इसकी कोई ओरिजिनल ट्रूथ नहीं है अंधकार का, लेकिन चूंकि प्रकाश विलुप्त है इसलिए वो रियल लगता है। मृत्यु नहीं है लेकिन सबसे रियल लगती है। मृत्यु क्यों रियल नहीं है? क्योंकि जीवन निरंतर बहता है, एक फॉर्म से फिर गुजरता हुआ अन्य अन्य अवस्थाओं से वापस दूसरे फॉर्म में। देखा जाए तो लाइफ का ऑपोजिट नहीं है मृत्यु, लेकिन वो एक स्टेप है, स्टेज है जो बड़ी रियल लगती है। देयर इज नो रियलिटी ऑफ डेथ अगर आप इंडियन मानसिकता से देखो। अभी कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, गुरुजी कोई बड़े उनके गुरुजी बड़ी शिवरात्रि सेलिब्रेट, डेथ इज अ रियलिटी, डेथ तो सबको आनी है। डेथ इज नॉट रियल। हम लोग ये कहते हैं राम नाम सत्य है, हम कब से कहने लगे कि मृत्यु नाम सत्य है? इसका अर्थ ये शरीर टूटता है, इट इज ट्रू, बट मृत्यु किसकी होती है? देही जो है वो तो चलता जाता है निरंतरता के भाव में। तो यहां पर डेथ अगेन अनरियल विच बिकम्स रियल। दूसरा क्या है? चित कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हर चीज को जानती है। यहां अनकॉन्शियसनेस, हम स्वयं को भी नहीं जानते, जड़ को भी नहीं जानते, देह को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते। देखिए इसका कितना प्रभाव है। तो ट्रूथ बिकम्स फॉल्सहुड, कॉन्शियसनेस बिकम्स अनकॉन्शियसनेस। फोर्स, शिवजी उठ खड़े हो तो थर थर कांपने लगे सारे, और हम क्या? अरे हम बड़े कमजोर हैं, आप ही हमारे माई बाप हो, हम तो बेकार हैं, लाचार हैं। ये वीकनेस का भाव किसने पकड़ा था? इस भाव ने किसको पकड़ा था? अर्जुन, अर्जुन को। दौर्बल्यम, ये वो जो अनकॉन्शियसनेस का असुर है ना, वो दुर्बलता लाता है। अरे हमारा क्या होगा, कोरोना हो गया, आप तो हमको भगवान भी नहीं बचा सकता, भगवान नहीं बचा सकता। ये जो भाव है दौर्बल्य का, ये अनकॉन्शियसनेस लाती है। और चौथे कौन? आनंद, ब्लिस। वो क्या बन गया है? सफरिंग। लोग पीड़ा ढूंढने लगे हैं, और कैसे कैसे मेथड उन्होंने ईजाद किए हैं। हॉरर, जितना आप मतलब जिसे पीड़ा में उनको जॉय, किस तरह का जॉय? विकृत। हॉरर मूवीज वगैरह आप देखेंगे ना कि हॉरर चीजें आजकल, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ स्कूल में बच्चे देख रहे हैं हॉरर, और टीचर्स ठीक है इट्स कूल। व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन सफरिंग के प्रति आपका आकर्षण। एल्कोहल, ड्रग्स, पीड़ा खुद को देना, दूसरों को देना, गॉस्पेल ऑफ सफरिंग। तो ये चार असुर है। और शेयरविंद तो स्पष्ट की भाई जब तक इनको नहीं कुछ करते तब तक ये तो इंस्ट्रूमेंट लाते रहेंगे। अब इनका क्या करेंगे? आप इनको मार नहीं सकते क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, ये शरीर नहीं है, ये शरीर धारण कर लेते हैं। शरीर आप मार दीजिए लेकिन इनको आप मार नहीं सकते, ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसी ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डार्क टू इट्स पेरेंट वाइट, यही रूपांतरण है। कैसे करेंगे? भगवान तो अपना काम करेंगे लेकिन हमारे अंदर भी थोड़े थोड़े ये चारों ऑपरेट करते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? तत्त्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि। और हम क्या कहते हैं? शरीर है। तो हम क्या कर रहे हैं? असुर की वाणी बोल रहे हैं। जब हम देह आत्म बोध से जीने लगते हैं तो वास्तव में वो असुर। मृत्यु तो सच है भाई, सबको आनी है। कौन सी आनी है भाई? वो रास्ता है, सत्य नहीं है। मार्ग में अंधकार आ गया थोड़ी देर के लिए, तो अंधकार सत्य नहीं है, एक पैसेज है। लेकिन माँ से किसी ने कहा, लेकिन इसको इतनी पावर किसने दे दी है? माँ कहती, तुम्हारे विश्वास ने इसको इतना मोटा बना दिया है। सावित्री में ये पंक्तियां भी आती हैं, मैन हैज लेंट टू दिस टेरिबल शेप। वरना वो एक पैसेज है जिससे जाना होता है हमको। अभी मैटर तैयार नहीं है, वो सब पूरी एक बात की बात, वी कैन टॉक अबाउट इट नेक्स्ट सेशन. तो ये हम सबके अंदर मिथ्यात्व है, हम सबके अंदर अंधकार का अंश है, हम सबके अंदर अनकॉन्शियसनेस का असुर, हम सबके अंदर पीड़ा के प्रति एक आकर्षण, और ये हमको अपने अंदर का शमन करना है, ये है प्योरिटी. माँ से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी अशुद्धि क्या है, हम लोगों ने तो सुना है ना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, माँ मूल में जाके कहती है भय, फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी. तो ये क्यों हटानी पड़ती है, क्योंकि ये असुरों के प्रभाव से आई है. आप कमजोर हो तो क्या करोगे, शक्ति की चाह है तो आप सारे पॉलिटिशियन से बना के रखोगे, माफिया डॉन से बना के रखोगे, क्योंकि आपको ये भाव है कि आप कमजोर हो, आप उन लोगों का सहारा लोगे. और इसीलिए भगवान ऐसे नहीं कि जितने भी इन लोग हैं इनको नष्ट कर दो. माँ कहती अगर मैं फॉल्सहुड को, किसी ने पूछा था आप नष्ट क्यों नहीं कर देती, कहती तुम सब खत्म हो जाओगे, तुम सब मिथ्यात्व से अपने जीवन को जी रहे हो. इसीलिए वो मौका दे रही है उसको बदलने का, कैसे, उनके जो डिसाइपल्स हैं उनके अंदर जैसे जैसे ये रूपांतरित होगी वैसे वैसे ये संसार में फैलेगी, ये उनका प्लान है, कि जो उनके डिसाइपल्स हम सब के अंदर इनकॉन्शियंट का हिस्सा है वो अलग बात है, हम उस पर पर्दा ढक के कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, पड़ोसी खराब है, कहने से नहीं होता है, भगवान सब जानते हैं. जब हम उसको देखते हैं अपने हिस्से का अंधकार और उसको ऑफर करते हैं माँ को, सिंसियरली प्रार्थना करते हैं कि माँ इसका शमन करो, तो हम उतना अधिक संसार में प्रकाश लाने में सहायक होते हैं. तो ये है द फोर ग्रेट असुरास. और ये छोटी सी पोयम, फिर हम लोग रुकेंगे, जस्ट 10 मिनट्स, विल रीड क्विकली. इसका नाम है द आयरन डिक्टेटर्स, पेज 49. और ये हम सबके सामने से भगवान की उपस्थिति को ढक लेते हैं, पेज 49. और इनका होल्ड किस पर है, जड़ तत्व के ऊपर. ये जड़ तत्व उनका किला है, दुर्ग है. शरीर ने ऐसा बांधा हुआ है हमको कि हम देख नहीं पाते भगवान, जो एकमात्र रियलिटी. हमारी श्रुति क्या कहती है, और कुछ है सिवाय भगवान के, नहीं. लेकिन आप पूछो कोई देख पर नहीं, देख नहीं पाते, ये इन्होंने ऐसा पार्ट्स में लपेटा हुआ है. और क्यों लपेटा है, क्योंकि प्रारंभ में इनकी आवश्यकता थी. इसी को कहते हैं डेट टू रुद्रा हैज टू बी पेड बिफोर मैन इज रेडी फॉर द लॉ ऑफ विष्णु. क्योंकि प्रारंभ में जब सृष्टि बहुत, प्रकृति बहुत अंधकार में थी, तो यही लोग आकर के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उठा रहे थे, डुबो रहे थे, यही सब कर रहे थे वो. आई लुक्ड फॉर दी अलोन बट मेट माई ग्लांस. कहा वो अंधकार में घुस के ढूंढ रहे हैं भगवान को. दी आयरन ड्रेडफुल फोर हु रूल अवर ब्रेथ, हमारी सांसों पर को भी उन्होंने कब्जे में किया हुआ है. मास्टर्स ऑफ फॉल्सहुड, किंग्स ऑफ इग्नोरेंस, हाई सॉवरेन लॉर्ड्स ऑफ सफरिंग एंड डेथ. वेंस केम दीज फॉर्मिडेबल ऑटार्कीज, इंडिपेंडेंट काम करते हैं, किसी की नहीं सुनते. भगवान की तो छोड़ो, आपस में भी लड़ते हैं, आपस में भी इनके सेक्ट बनते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ दे आर. लड़ना उनकी, कहते हैं ना, बिना कारण के, ये उनके रक्त में है. फ्रॉम वॉट इनकॉन्शियंट ब्लाइंड इंफिनिटी, कोल्ड प्रोपेगैंडिस्ट ऑफ ए मिलियन लाइज. असुर के पहचानों में से एक है प्रोपेगैंडा, प्रोपेगैंडा मशीन बहुत अच्छी होती है असुर की. दूसरी चीज जो उसकी होती है रेजिमेंटेशन, हर किसी को एक प्रकार से जीवन जीना है, वो वेरिएशन नहीं पसंद करता है, ब्लॉट आउट कर देगा वेरिएशन. तो दूसरी चीज होती है उसकी रेजिमेंटेशन. तीसरा मैकेनिकल थिंग, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो जाएगा, हृदय का स्थान नहीं रहेगा. आप कहीं, आप देखिए पश्चिमी सभ्यताओं में इस तरह की चीज हुई, अब वो कोलैप्स कर रहे हैं. हृदय के स्थान से मेरा मतलब है, थोड़ा इसको यूमरसली बोल रहा हूं मैं. आप वेस्टर्न कंट्रीज हम सब गए हैं, तो वहां पे आपका, मान लीजिए गाड़ी आपकी रेड लाइन क्रॉस हो गई, अब भूल से हो गई, कुछ भी अचानक हो गई, भूल हो जाती ना मनुष्य से, आपके घर पे $400 का फाइन चला गया. आप उसको समझाते रहिए, भैया जल्दी थी, हमको पहुंचना था, नथिंग वर्क्स। भारत में पुलिस वाला आएगा, भैया देखो घर में ना प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी जाना है लाने। वो क्या कहेगा? वो कहेगा हमारे घर में भी प्रॉब्लम है, आप उसको अब ये देखेंगे अगर आप एक मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, और गलत है, ये नहीं होना चाहिए बट ये इंडियन सोशलिज्म है गरीब आदमी है आप भी उस पर, वो भी आप पर चले जाते हो, ये तरीका होना नहीं चाहिए, आई एग्री। पर एक उदाहरण है कि उसमें क्या चीज थी जो ऑपरेट कर रही थी, हृदय। हमें भी समझ आया कि वो बेचारा खड़ा है पूरे दिन से धूप में खड़ा है, ट्रैफिक डाइवर्ट करता है। मैं तो कई बार उनको सैल्यूट करता हूँ, बोलता हूँ उनको कि आई टेल यू, आप लोग कभी कभी वो बेचारे खड़े हो गए ना, ये परेशान ये पुलिस वाले, और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं रुकता हूँ, कविता भी बोलती है, रुक करके उनको बोलता हूँ थैंक यू सो मच। वो समझ जाता है क्यों सर, कहते नहीं आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हो, मजाक नहीं है ये बोल करके। अब यहाँ क्या है, आपके हृदय के एक भाव है। जब सब चीजें मैकेनाइज्ड हो जाती हैं, मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में हृदय के भावों का कोई स्थान नहीं है। एग्जैक्टली रूल बाउंड सिस्टम, इसीलिए जो वेस्टर्न सोसाइटी में जो रूल बाउंड सिस्टम बना वो रीजन ने बनाया, और उसमें उसकी नियति कोलैप्स होनी है, उसमें हृदय के भाव क्रश होते चले गए। इसका पूरा सावित्री में वर्णन है। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है, बड़ा सुंदर है, लेकिन आप देखिए चिड़िया मार दी गई, क्यों? बर्ड मीनेस होगा, ड्रॉपिंग्स होगी, सब कर दिया आपने, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, रोड क्लीन है, और सुबह चिड़िया आप नहीं सुन रहे। भारत में तो हमारे चिड़िया भी चहचहा रही है, मंदिर में घंटी भी बज रही है, दूध वाला भी टन 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 शोर कर रहा है, अखबार वाला भी कह रहा है। अब ये सोच की बात है, एक है जहां भाव से सब जुड़े हैं, दूसरा है जहां मैकेनाइज्ड है, और बड़ा विचित्र है वो देखा जाए तो। इसलिए हृदय के भाव सूखने लगते हैं। सिंगापुर इज एन एग्जाम्पल। जब मैं वहां से, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन सिंगापुर का यही था कि ये हृदयहीन जगह है। बाद में पता चला क्या क्या होता है वहां पे, बड़ा मैकेनाइज्ड कंट्रोल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो फंस गए, छोटी सी कोई चीज जो भूल से हुई और 6 महीने जेल में रो रहे हैं, लख रहे हैं। तो ये जो मैकेनाइज्ड कंट्रोल होता है, तो यहां उसकी बात हो रही है। डिक्टेटर्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ एगनी। रावण क्या, ड्रीम डेस्टिनेशन लंका रावण का, सब ठीक है। रावण के विरोध में आपने कुछ बोला, आपका अपना भाई इज किक्ड आउट। और वॉज इट दाउ हु बोर्ड द फोर फोल्ड मास्क। अब कहते हैं कि आप नहीं पहना ये मास्क, तो एकमात्र Enveloping thy timeless heart in time, thou hast bound the spirit to its cosmic task, to find thee veiled in this tremendous mime. क्यों आपने ये मास्क पहना, आप ये भी बता रहे हैं। शुरू से ही सब प्रेम है प्रेम है, तो आप देखिए क्या हुआ था। श्री अरविंद बताते हैं कि अंततः हम संसार में प्रेम और आनंद को स्थापित करने आए, जो श्री कृष्ण का है, लेकिन हमने देखा है कि बिना सत्य के आधार के वो बहुत शीघ्र ही ऑल लव बिकम्स ऑल लस्ट। बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां ये हुआ है। सब प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, अब प्रेम करते करते कहां चले गए, प्रेम समझे ही नहीं, प्रेम का क्या बन गया, लस्ट बन गया, कामना वासना। तो इसलिए मास्क क्यों, ताकि मनुष्य दृढ़ हो सके, स्ट्रांग हो सके, और जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो ये मास्क हट जाएगा, और प्रेम आनंद के लिए पृथ्वी बनी है। ये लोग प्रश्न करते हैं कि जब आनंद के लिए बनी है, आनंदम ब्रह्मेति, तो ये क्या है, ये आनंद की तैयारी है। इन वन वर्ड सुपर माइंड क्या है, आनंद की तैयारी है। बिना सुपर माइंड के, सत्य चेतना के, यदि आनंद आया तो थोड़े से आनंद से तो हम लोग डांस करने लगते हैं, उछलने लगते हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं ड्रम बीट से, हा हा हो रहा है, थोड़ा कृष्ण भजन में जंप कर रहे हो आप। तो आनंद अगर सच में आ गया, आनंद को संभालने की जो स्थिति होती है वो केवल एक की हम पूरे भागवत में देखते हैं, वो है राधा, शांत बैठी हैं, चुप बैठी हैं। उद्धव कहते हैं तुमको दुख नहीं हो रहा? किसका दुख? कृष्ण चले गए। कृष्ण कहाँ गए? यहीं पर हैं। ये स्थिति होती है। शी नॉट जंपिंग, डांसिंग, एक्साइटेड, अच्छा कृष्ण से मिलके आयो, दिखाओ मुझे, ये दो। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए अंदर में, बहुत प्योरिटी चाहिए। तो ये सत्य चेतना अभी सुपर माइंड तैयार कर रहा है हमको फॉर दैट अल्टीमेट रेन ऑफ ब्लिस एंड लव। दाओ, ओनली दाओ कैन रेज द इनविंसिबल सीज। इस महाअंधकार को, इस अचित को आप ही हटा सकते हो। ये मुखौटा आपने ही ओढ़ा है और आप ही इसको हटा सकते हो। ओ लाइट, ओ डेथलेस जॉय, ओ रैप्चरस पीस। वहां भी उसको इन्वोक कर रहे हैं, हे प्रकाश, हे अमर्त्य आनंद, हे आह्लादित करने वाली शांति। और वो उस शांति को, उस शक्ति को, उस आनंद को, उस सत्य को श्री अरविंद अपने अंदर धारण करते हैं और स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर अंधकार को, अचित को, मास को हटाते हैं। हम लोग यहाँ रुकेंगे और कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस।